हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रॉबिन के पास अब तक मेलिसा के अरेस्ट होने की खबर पहुंच चुकी थी। वो उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसके लिए परेशान हो रहा था। जब से उसे वो न्यूज़ मिली थी, वो लगातार किसी न किसी व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में था ताकि मेलिसा को छुड़ा सके। किसी भी तरफ से बात बनते ना देख रॉबिन ने गुस्से में अपना फ़ोन फेंक दिया। डिस्गस्टिंग, सब के सब सेल्फिश हैं। ज़रूरत होती है तो कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए आ जाते हैं, और अब आज मुझे हेल्प चाहिए तो सब दूर दूर भाग रहे हैं। रॉबिन के पास खड़ा एक आदमी बोला, सर, आप बेवजह इधर उधर हाथ मार रहे हैं। इनमें से किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि वो उन एजेंसी वाले से मेलिसा मैडम को छुड़ा सके। आप अच्छे से जानते हैं कि ये काम कौन कर सकता है। डायरेक्ट विधिक सर को कॉल कीजिए ना। तुझे क्या लगता है पीटर, अब तक उसे पता नहीं चला होगा? उस इंसान को किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो मेरी मदद कभी नहीं करेगा, रॉबिन ने फ्रस्ट्रेट होकर जवाब दिया। फिर भी एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? आजकल आप दोनों साथ भी काम कर रहे हैं। ये काम अकेले आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, आप बात करके देखिए, क्या पता बिग बॉस के दबाव में आकर वो मेलिसा मैडम को बाहर निकलवा दे। पीटर की बात सुनकर रॉबिन ने हामी भरी। उसने तुरंत एंड्रयू को कॉल किया जो उनसे ये सब करवा रहा था। उसे मेलिसा के पकड़े जाने की बात बताने के बाद रॉबिन ने कहा, एंड्रयू, तुम्हें कुछ भी करके मेरी वाइफ को बाहर निकलवाना होगा। ये काम तुम लोगों का ही है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। मुझे मेरी मेलिसा वापस चाहिए। सॉरी रॉबिन, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। अगर मेलिसा की वजह से हमारे ऊपर थोड़ी सी भी आंच आई तो एजेंसी में भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो उसकी वही जान ले सकते हैं। तुम उसे भूल जाओ और किसी और लड़की के साथ सेट हो जाओ, अब वो हमारे किसी काम की नहीं रही। एंड्रयू ने रॉबिन की मदद करने से साफ मना कर दिया और अपनी बात कहकर कॉल कट कर दिया। मैंने कहा था ये सब एक जैसे हैं, कोई किसी काम का नहीं है, रॉबिन ने पीटर की तरफ देखकर कहा। वो उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। अब तो सर जी एक ही तरीका है, आप विधिक सर से डायरेक्ट बात कीजिए, वही आपकी मदद कर सकते हैं। रॉबिन के पास विधिक से बात करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने तुरंत विधिक को कॉल किया। वही रॉबिन का कॉल आता देख विधिक के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। उसने कॉल पिक करके कहा, मैं बस तुम्हारे ही कॉल का इंतजार कर रहा था रॉबिन। विधिक, तुम्हें पता ही होगा कि मैंने तुम्हें क्यों कॉल किया है। अगर सब पता है तो तुम इस मामले में कुछ करते क्यों नहीं, रॉबिन ने गुस्से में कहा। ठीक है, फिर आ जाओ मेरे घर पर, अपनी बात कहकर विधिक ने कॉल कट कर दिया। उसके चेहरे पर स्माइल थी, उसके सामने दिव्याना खड़ी थी। तुमने ये पहली बार देखा होगा कि शिकार खुद ही आकर जाल में फंसेगा, बहुत मज़ा आएगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे, दिव्याना ने उसे रोकने की कोशिश की। जहां तक मुझे याद है मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था, और हाँ, जिससे मेरी बटरफ्लाई की शादी एक अनजान आदमी के साथ करवा दी उसे सजा देना तो बनता है, विधिक ने क्रूरता के साथ कहा। अगर तुमने उसे मारा तो उसके गैंग वाले तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। उसकी गैंग भी मेरी और ये माफिया वर्ल्ड भी मेरा। उस जैसे छोटे मोटे माफिया के मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी अब वो बूढ़ा हो चुका है, जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, तो यूं सोच लो विधिक राणा ने उसे वक्त से पहले ही मुक्ति दे दी। दिव्याना अपनी तरफ से विधिक को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विधिक ने उसे इस मामले में पढ़ने से मना कर दिया था। ऐसा करो, जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ, तुम ये सब देख नहीं पाओगी, विधिक ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। दिव्याना अपने कमरे में चली गई तो विधिक ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कुछ ही देर में रॉबिन वहां पहुंच चुका था। विधिक, मुझे तुम फ्यूचर में जो भी काम कहोगे, जब भी मदद मांगोगे, मैं हमेशा तैयार रहूंगा, बस इस बार मेलिसा को बाहर निकालने में मेरी हेल्प कर दो, रॉबिन ने विधिक से मिलते ही सबसे पहले यही कहा। विधिक आराम से काउच पर बैठा था, उसके पैर सामने की टेबल पर थे। उसने रॉबिन की तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है रॉबिन, विधिक राणा को कभी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी? हाँ, जानता हूँ, नहीं पड़ेगी, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, बस तभी कह रहा हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ठीक है, कर दूंगा, पर उससे पहले थोड़े पुराने हिसाब बराबर कर लेते हैं। याद है कुछ दिनों पहले दिन एक लड़की खो गई थी और हमें उसके मैरिज हॉल में छिपे होने का डाउट था। उसे ढूंढने के चक्कर में तुमने उस मैरिज हॉल में मौजूद सभी लोगों की शादी करवा दी थी। विधिक घुमा फिराकर बातें कर रहा था, जबकि रॉबिन को इस वक्त उसकी हेल्प की जरूरत थी। वो गुस्से में इरिटेट होकर बोला, हाँ याद है, सब अच्छे से याद है, पर उसका अभी इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी उस दुश्मन को ढूंढने में भी दिन रात एक कर दूंगा। तुम्हें पता है उस दिन वो लड़की जिसे मैं ढूंढ रहा था वो वहीं पर थी। तब तो उसे ढूंढना और भी आसान होगा। मेरे पास उन सब लोगों की डिटेल है, तुम उसका नाम बताओ। आई स्वेयर उस लड़की को इतना टॉर्चर करूंगा कि उसे तुम्हारे दुश्मन होने पर अफसोस होगा। रॉबिन बोल रहा था तभी विधिक उठा और उसका गला पकड़कर उसे दीवार पर लगा दिया। वो उसका गला दबाते हुए बोला, तूने जिस लड़की की शादी किसी और से कराई है वो मेरी दुश्मन नहीं बल्कि मेरा प्यार है। अब तो खुद सोच ले कि मैं तेरा क्या ख्याल करूंगा। मुझे नहीं पता था, रॉबिन अटकते हुए बोला। पता है, पिछले 2 साल से उसे ढूंढ रहा हूँ, पर जब वो मेरे हाथ लगी तो तूने किसी और के हवाले कर दिया उसे। अरे, मेरी गाड़ी तक का कोई डेंट मार दे तो मैं उसे जान से मार देता हूँ, फिर यहाँ तो बात मेरे प्यार की है, विधिक चिल्ला कर बोला। वही दिव्याना के कान में उसकी आवाज पड़ी तो वो घबरा गई। मुझे इसे रोकना होगा, इसने रॉबिन को मार दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। दिव्याना तेजी से डोर की तरफ बढ़ी और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। दरवाजा बाहर से बंद होने की वजह से खुला नहीं तो उसने गुस्से में दरवाजे को किक मारी। प्लीज विधिक, ओपन द डोर, हम बैठकर बात करते हैं। विधिक को दिव्याना की आवाज सुनाई दी, उसने उसे पूरी तरह अनसुना कर दिया। वो जानता था कि आंशी के नाम पर दिव्याना उसे रॉबिन को मारने से रोक ही लेगी। विधिक ने अपनी गन निकाली और रॉबिन के माथे पर रखकर कहा, सिर्फ और सिर्फ अपनी बटरफ्लाई की वजह से ये कर रहा हूँ, वरना तुझ जैसा इंसान इतनी आसान मौत बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। रॉबिन को कुछ बोलने का मौका नहीं मिला और विधिक ने उसके माथे पर 3 गोलियां चलाईं। दीवार पर खून बिखरा था और जमीन पर रॉबिन की लाश पड़ी थी।